दिन भर 14 फरवरी मंगलवार आप सभी को निखिल रंजन का नमस्कार। आय से अधिक संपत्ति मामले में शशिकला दोषी करार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुरंत करे समर्पण, तमिलनाडु की राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ने के आसार। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल फ्लिन ने दिया इस्तीफा, 3.5 हफ्ते पुरानी सरकार के लिए एक और झटका। दिल्ली में आम आदमी सरकार के 2 साल पूरे, विपक्ष का आरोप हर मोर्चे पर नाकाम। वैलेंटाइन डे पर होगी खास मुलाकात प्रेमियों की मदद करने वाले लव कमांडो से।
बिना मतलब के जी हमारे यहाँ लव मैरिज होती नहीं है। अरे क्यों नहीं होती भाई, कहाँ की संस्कृति में नहीं होगी कि प्यार करना पाप नहीं और विरोधी हमारा बाप नहीं।
खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले प्रमुख विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। सुप्रीम कोर्ट ने AIADM के महासचिव शशिकला को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी ठहराया है। कोर्ट ने उन्हें 4 साल की सजा सुनाई है। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के निधन के बाद शशिकला को पार्टी का महासचिव चुना गया था। बाद में उन्हें विधायक दल का नेता भी चुना गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऐलान के बाद शशिकला गुट के विधायकों ने ईके पलनीसामी को नया नेता चुना है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल फ्लिन ने इस्तीफा दे दिया है। रिपोर्टों के मुताबिक फ्लिन ने ट्रंप के राष्ट्रपति पद संभालने के पहले रूस के राजदूत के साथ अमरीकी प्रतिबंधों को लेकर चर्चा की थी। अपने इस्तीफे के पत्र में फ्लिन ने ये बात मानी है कि उन्होंने राजदूत के साथ टेलीफोन पर हुई बातचीत के बारे में अधूरी जानकारी दी थी। हालांकि उनका कहना है कि भूलवश ऐसा हुआ था, रूस ने इस मामले पर टिप्पणी करने से मना कर दिया है। जापान की कंपनी तोशिबा को इस साल $3.4 अरब का घाटा होने की खबर आने के बाद कंपनी के चेयरमैन शिगेनोरी शिगा ने इस्तीफा दे दिया है। कंपनी ने अपने वित्तीय नतीजों के ऐलान में देरी की थी। परमाणु ऊर्जा व्यापार में मुश्किल की वजह से विशेषज्ञ कंपनी के भविष्य को खतरे में बता रहे हैं। तोशिबा ने परमाणु ऊर्जा के भविष्य पर दांव लगाया था, लेकिन अमरीकी सहयोगी कंपनी वेस्टिंग हाउस की दिक्कतों और फुकुशिमा परमाणु हादसे की वजह से कंपनी की रणनीति काम नहीं कर सकी। कंपनी के प्रेसिडेंट सतोशी सुनकावा ने कहा कि खराब नतीजों की कीमत आला प्रबंधकों को चुकानी होगी। उन्होंने कहा, जैसा कि यहाँ लिखा है, सुनकावा, मैं, चेयरमैन शिगा, डैनी रोडरिक और हत्जावा इस मामले की जिम्मेदारी लेंगे। जहां तक शिगा की बात है, वो चेयरमैन पद छोड़ रहे हैं और वेस्टिंग हाउस के साथ मामला सुलझाने पर ध्यान देंगे। ये थे तोशिबा के प्रेसिडेंट के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। समाचार एजेंसी रॉयटर्स और दक्षिण कोरिया की सरकारी मीडिया के मुताबिक उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के सौतेले भाई की मलेशिया में हत्या कर दी गई है। दक्षिण कोरिया से आई रिपोर्टों के मुताबिक किम जोंग नैम की मौत सोमवार को सुबह क्वालालंपुर एयरपोर्ट पर हुई। मलेशिया की पुलिस का कहना है कि वो मरने वाले व्यक्ति की पहचान का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। नैम किम जोंग द्वितीय के सबसे बड़े बेटे थे। जनदर में कमी के बीच थाईलैंड की सरकार वैलेंटाइंस डे के मौके पर महिलाओं को ज़्यादा बच्चों को जन्म देने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। 1970 के दशक में थाईलैंड में औसतन एक दंपत्ति की 6 संतानें होती थी, अब ये संख्या घटकर 1.6 रह गई है। इसके लिए जीवन शैली में बदलाव को जिम्मेदार बताया जा रहा है। बैंकॉक स्वास्थ्य विभाग के निदेशक डॉक्टर वाचिरा पैंग जुत्र ने कहा, जनदर घट रही है, फिलहाल ये 0.4% पर है। अगर हम अभी सचेत नहीं हुए तो ये और घटेगी। हमें कम से कम ये जनदर बरकरार रखनी है, ये इससे ज़्यादा नहीं घटनी चाहिए। हम ये भी तय करना चाहते हैं कि जन्म लेने वाले बच्चे स्वस्थ हों। अगर जनदर कम होती रही तो इसका असर हमारे देश और अर्थव्यवस्था पर होगा। ये थे डॉक्टर वाचिरा के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। थाईलैंड की पुलिस का कहना है कि उन्होंने कोकीन की तस्करी के लिए इस्तेमाल हो रहे नए तरीके की जानकारी जुटाई है। पुलिस के मुताबिक बॉडी लोशन में ड्रग्स मिलाकर उसकी तस्करी की जा रही है। सोमवार को बैंकॉक में इक्वाडोर की एक महिला को गिरफ्तार किया गया। उसके पास बॉडी लोशन की 6 बोतलें थीं। पुलिस के मुताबिक इसे लेकर अधिकारियों को संदेह हुआ। बीबीसी समाचार।
बीबीसी रेडियो पर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिल रंजन। जैसा कि आपने समाचारों में वात्सल्य राय से सुना, सुप्रीम कोर्ट ने AIADMK की महासचिव के वी शशिकला को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने शशिकला को 4 साल के कैद की सजा सुनाई है और उन्हें तुरंत निचली अदालत में समर्पण करने को कहा है। फैसला आने के बाद चेन्नई में ओ पनीरसेल्वम के कैंप में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन शशिकला गुट ने पालनी स्वामी को विधायक दल का नया नेता चुन लिया है और उन्होंने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। पूरे ब्यौरे के साथ दिल्ली से सलमान रावी।
सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष और न्यायमूर्ति अमिताभ राय की खंडपीठ ने अपने 300 पन्नों के आदेश में शशिकला के साथ साथ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में उनके साथ बनाए गए अभियुक्त इलावरासी और सुधाकरण को भी 4 साल की सजा सुनाई है। ये निचली अदालत का फैसला है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने फिर बहाल किया, जिसके तहत 10 करोड़ रुपये जुर्माना भी शामिल है। वैसे शशिकला के 10 सालों तक चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कर्नाटक के सरकारी वकील ने पत्रकारों को बताया,
टुडे इज अ लैंडमार्क जजमेंट। द सुप्रीम कोर्ट इन इट्स लैंडमार्क जजमेंट हैड सेट असाइड द ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल जज मिस्टर कुमार स्वामी ऑफ द कर्नाटक।
सरकारी वकील कह रहे थे कि 19 सालों के बाद इंसाफ हुआ है, इसलिए ये एक ऐतिहासिक पल है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस आदेश को निरस्त कर दिया है जिसमें मामले के अभियुक्तों को बरी कर दिया गया था। वहीं अन्नाद्रामुक के नेता और लोकसभा में डिप्टी स्पीकर मुनिसामी थंबीदुराई का कहना था, शशिकला के खेमे के थंबीदुराई कह रहे थे कि उनकी पार्टी फैसले के खिलाफ जल्द ही पुनरावलोकन याचिका दायर करेगी। क्योंकि ये 2 सदस्यों वाली खंडपीठ थी, इसलिए वो इससे बड़ी खंडपीठ के सामने अपील करेंगे। मगर मामले के याचिकाकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी का कहना था,
5 जज के सामने भी नहीं जा सकते, वो सब एक औपचारिकता है। मुझे नहीं लगता कि 4 साल से की सजा से बच सकते। यही कहा है कि भ्रष्टाचार लड़ना हमारा धार्मिक अधिकार है और ये तुम्हारे अखबार वाले भी सीखना चाहिए। नहीं, देयर नो ऑप्शन। वो AIADMK जो शशिकला जिसकी जनरल सेक्रेटरी है, उसकी पार्टी की मेजोरिटी है, उसकी जो आप नुमाइंदे वो चुनेगी, उस नुमाइंदे को मुख्यमंत्री तुरंत बनाना चाहिए। और अब जब गवर्नर को किसी हालत में यानी देरी नहीं करनी चाहिए, और करेंगे तो फिर वो भी एक केस बनेगा।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तमिलनाडु के कार्यवाहक मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम के घर के बाहर उनके समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। जश्न के बीच पनीरसेल्वम ने वहां मौजूद पत्रकारों से बात करते हुए कहा,
உறுதியாக செயல்படுத்தும் என்பதை நான் இந்த நல்ல நேரத்திலே தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் முழுவதுமாக।
पनीर सेल्वम कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने तमिलनाडु को बर्बाद होने से बचा लिया। वो कह रहे थे कि वो पूर्व मुख्यमंत्री जय जयललिता की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए काम करते रहेंगे। मगर इसी बीच नाटकीय रूप से शशिकला की मौजूदगी में हुई अन्नाद्रामुक के विधायकों की बैठक में E.K. पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में आय से अधिक संपत्ति के मामले के सभी अभियुक्तों से कहा है कि वो निचली अदालत में आत्मसमर्पण कर दें। सलमान रावी, BBC दिल्ली।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले में V.K. शशिकला को दोषी करार दिए जाने के बाद भी तमिलनाडु में तुरंत राजनीतिक स्थिरता आने की उम्मीद नहीं है। दोषी ठहरा जाने से बेपरवाह शशिकला सत्ता पर अपनी पकड़ बनाने में जुटी हैं। उन्होंने कार्यवाहक मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम के खिलाफ E.K. पालनीस्वामी को अपने गुट के विधायकों का नेता चुना है। पालनीस्वामी लंबे समय से उनके भरोसेमंद रहे हैं। तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति ऐसी है कि अभी इस बारे में कयासी लग रहे हैं कि शशिकला गुट के कितने विधायक पनीरसेल्वम के साथ जाएंगे। हालांकि पनीरसेल्वम को भी अब भरोसा हो गया है कि बहुमत उनके साथ आएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कई और सवाल उठा दिए हैं जो पार्टी में विभाजन की लकीर गहरी कर सकते हैं। पूरे ब्यौरे के साथ बेंगलुरु से इमरान कुरैशी।
जब से AIADMK में संकट शुरू हुआ, तब से हर किसी का मानना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट आय से अधिक संपत्ति के मामले में अपना फैसला सुना दे तो तमिलनाडु में राजनीतिक स्थिरता आ जाएगी। मतलब ये कि शशिकला को दोषी ठहराने के बाद उनको समर्थन देने वाले विधायक फौरन पनीरसेल्वम की तरफ पलट जाएंगे। लेकिन कोर्ट का फैसला आने के 9 घंटे बाद भी ऐसा नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल उठा कि क्या तमिलनाडु में राजनीतिक स्थिरता आने में और देरी होगी। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि देरी इसलिए होगी क्योंकि बहुत सारे दूसरे सवाल अभी उठ गए हैं। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के चेन्नई डायरेक्टर एन सत्यमूर्ति।
इट विल डिपेंड ऑन ए लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स डिपेंडिंग ऑन द फ्लो टेस्ट एंड
पन्नीरसेल्वम के समर्थन में कितने विधायक जाएंगे वो राज्यपाल विद्यासागर राव पर निर्भर होगा, मतलब कि वो किसको पहले बुलवाएंगे विधानसभा में अपनी बहुमत साबित करने के लिए। ये थे एन सत्यमूर्ति के शब्द। तमिलनाडु की 234 सदस्य विधानसभा में पन्नीरसेल्वम या पलनीस्वामी को कम से कम 118 सदस्यों के समर्थन की जरूरत है। पलनीस्वामी को 1989 में पहली बार जयललिता ने एमएलए बनवाया, उसके बाद से वो हर चुनाव में जीतते आए हैं और मंत्री भी बने, लेकिन ये सब जानते हैं कि वो शशिकला के खास समर्थक हैं। शशिकला का प्रभाव पार्टी में इसलिए भी रहा है क्योंकि जब पार्टी टिकट का बंटवारा हो रहा था तब जयललिता बीमार थी, ऐसे में उनको विधायक दल का समर्थन मिलने की वजह साफ है। तो इससे क्या हो सकता है? वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक के एन अरुण कहते हैं,
द रियल गेम इज स्टार्टिंग ओनली नाउ बिकॉज़ फॉर ऑल इफ यू रियली गो बाय द वर्ड ऑफ लॉ,
खेल तो अभी शुरू हुआ है। जब शशिकला विधायक दल की नेता नहीं बनेंगी तो अभी ये देखना होगा कि कितने विधायक पन्नीरसेल्वम की ओर जाते हैं। पहले से भी ज्यादा अभी पार्टी का विभाजन होना मुमकिन है। ये थे केन अरुण के शब्द। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है शशिकला के गुट का प्रभाव पार्टी में है तो सही, लेकिन काडर शशिकला के खिलाफ है। एक और राजनीतिक विश्लेषक एस मुरारी ने कहा,
सो मच ऑफ रिवर्शन अगेंस्ट हर इवन बिफोर ऑल दिस व्हेन शी बिकेम क्लेम एज जनरल सेक्रेटरी एंड देन एसएससी।
पार्टी के काडर में शशिकला के खिलाफ इतनी मजबूत भावना रही है जब वे महासचिव बनी और जब वो विधायक दल की नेता चुनी गई तब भी। जब उनके पास सत्ता नहीं रहेगी तो विधायकों का समर्थन भी चला जाएगा। ये थे मुरारी के शब्द। तो क्या अन्ना डीएमके के लिए शशिकला का दौर खत्म माना जा सकता है? इसके जवाब में विश्लेषकों का कहना है कि शशिकला भले ही पार्टी के लिए अहम ना रहें, लेकिन उनके समर्थक पार्टी के लिए अहम बने रहेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि बहुमत कौन हासिल करता है। हालांकि ये तो पक्का है कि पार्टी को आने वाले दिनों में अभी और कई मुसीबतों का सामना करना है। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
तमिलनाडु की पल पल बदलती स्थिति पर नजर रखनी है तो आइए bbchindi.com पर, जहां लगातार इस बारे में खबरें अपडेट हो रही हैं। ये बीबीसी रेडियो है और आप सुन रहे हैं दिनभर निखिल रंजन के साथ। और आइए अब रुख करते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय खबर का। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल फ्लिन ने इस्तीफा दे दिया है। रूस के साथ कथित संपर्क की वजह से फ्लिन पर इस्तीफा देने का दबाव बढ़ता जा रहा था। माइकल फ्लिन के बारे में कहा गया था कि उन्होंने ट्रंप के सत्ता संभालने से पहले अमरीका में रूसी राजदूत से प्रतिबंधों के बारे में चर्चा की थी। फ्लिन ने उपराष्ट्रपति माइक पेंस से भी इस बारे में झूठ बोला था। पूरा हाल सुनिए फैसल मोहम्मद अली से।
अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सुरक्षा सलाहकार माइकल फ्लिन को इस्तीफा देना पड़ा है। ऐसी खबरें आई हैं कि उन्होंने व्हाइट हाउस के अधिकारियों को अमरीका में रूसी राजदूत से अपने संबंधों के बारे में गलत जानकारी दी थी। दोनों के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत के सामने आने के बाद माइकल फ्लिन ने इस्तीफा दे दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले ही टेलीफोन पर हुई इस बातचीत में फ्लिन ने अमरीकी संबंधों के बारे में चर्चा की थी। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता शॉ स्पाइसर ने बताया,
वो उपराष्ट्रपति माइक पेंस से फिलहाल बात कर रहे हैं और बातचीत इस बारे में है जिसे वो सबसे जरूरी मानते हैं, यानी हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा। इस दौरान फ्लिन ने माइक पेंस और दूसरे लोगों से जो बात कही थी उस पर भी चर्चा हो रही है।
फ्लिन ने अपने इस्तीफे में माना है कि उन्होंने टेलीफोन पर हुई बातचीत के बारे में गलत जानकारी दी थी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसा लापरवाही के कारण हुआ। अमरीकी थिंक टैंक फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव के फेलो जेम्स कर्शिक ने कहा कि झूठ बोलने के कारण जनरल फ्लिन को इस्तीफा देना पड़ा है।
Well, I certainly, you know, disagree with what General Flynn was doing. I don't think it's actually the content here that's what got him into trouble. It was lying.
हालांकि मैं निश्चित रूप से फ्लिन के काम से असहमत हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वास्तव में इसी वजह से वो परेशानी में आए हैं। ये उपराष्ट्रपति माइक पेंस और दूसरे लोगों से बोला गया झूठ था। वो झूठ और टेलीफोन पर बातचीत का ब्यौरा छिपाने के कारण मुझे लगता है कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है।
कई लोगों का मानना है कि जनरल फ्लिन की विदाई के साथ ट्रंप प्रशासन कुछ राहत की सांस ले सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स के व्हाइट हाउस संवाददाता ग्लेन यर्श।
दिस इज ए डीपनिंग एंड वाइडनिंग स्कैंडल एंड मिस्टर फ्लिन हैज लेफ्ट आफ्टर 3.5 वीक्स।
ये एक बड़ा विवाद है और माइकल फ्लिन ने महज 3.5 हफ्तों में ही इस्तीफा दे दिया। मैं इसे खुद उनके प्रशासन के लिए राहत कहूंगा क्योंकि उन्हें बहुत आक्रामक माना जाता है। अभी थोड़ी अराजक स्थिति है ऐसे प्रशासन में जहां बाएं हाथ को नहीं पता कि दायां हाथ क्या कर रहा है, बल्कि कहना चाहिए कि बायां हाथ कभी दायां हाथ को देख नहीं पाएगा।
डेमोक्रेटिक पार्टी के एक वरिष्ठ सांसद एडम शिफ ने कहा कि फ्लिन की विदाई से वो सवाल खत्म नहीं हुए जो डोनाल्ड ट्रंप के चुनावी अभियान और रूसी राष्ट्रपति से संबंधों को लेकर पूछे जा रहे हैं। ओबामा प्रशासन ने डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव में रूस से मिली सहायता को लेकर प्रतिबंध लगाए हैं। फिलहाल अमेरिका में सेना के एक जनरल रहे कीथ केलोग को कार्यवाहक राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है।
अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल फ्लिन का इस्तीफा। डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के 3.5 हफ्ते के भीतर ही एक अहम शख्स के इस्तीफे से राष्ट्रपति को एक और झटका लगा है। वाशिंगटन से ब्रजेश उपाध्याय जुड़ चुके हैं हमारे साथ। ब्रजेश, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए फ्लिन का इस्तीफा कितना बड़ा झटका है?
देखिए, बहुत बड़ा झटका है उनके लिए। ठीक 24 दिनों के अंदर अपने सबसे उच्च सलाहकारों और अपने सबसे करीबी समझे जाने वाले सलाहकारों में से एक को उन्होंने खो दिया है। वो भी बिल्कुल एक जो कल की दिन भर की घटना थी, इतनी नाटकीय थी कि पहले उनकी उच्च सलाहकार केलियन कॉनवे आई, उन्होंने कहा कि फ्लिन को राष्ट्रपति का पूरा विश्वास प्राप्त है। उसके फौरन बाद व्हाइट हाउस के प्रवक्ता आते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, पूरी स्थिति का आकलन कर रहे हैं ट्रंप। और उसके थोड़ी देर बाद अमरीकी मीडिया में स्टोरी ब्रेक हुई कि रूस के पास फ्लिन के बारे में ऐसी जानकारी है जिसकी वजह से उन्हें ब्लैकमेल किया जा सकता है। और तब फिर उसके 1.5 घंटे के बाद ये इस्तीफे का फैसला आया। 2 हफ्तों के अंदर आप कह सकते हैं कि उनके लिए दूसरा बड़ा झटका है राष्ट्रपति के लिए, क्योंकि पहले 7 मुसलमान बहुल देशों से आने वालों पर लगाए गए प्रतिबंध पर अदालत ने रोक लगा दी थी और अब माइकल फ्लिन को इस्तीफा देना पड़ा है। ट्रंप के लिए चुनौती ये होगी कि अब वो रूस के प्रति किस तरह का रुख अपनाते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे चुनाव अभियान के दौरान और फिर उसके बाद भी राष्ट्रपति पुतिन की तारीफ की थी, साथ ही जो रूस पर अमरीकी चुनाव में दखलंदाजी करने के आरोप लग रहे थे उसको काफी हद तक नकारा था। तो ये एक बड़ी चुनौती होगी, और क्योंकि इसलिए भी क्योंकि रूस बार बार इस बात से इनकार करता रहा पिछले 2-3-4 हफ्तों में कि माइकल फ्लिन और उनके बीच रूस पर लगे प्रतिबंधों को हटाने संबंधित कोई बात हुई थी, तो ये कैसे उसको वो जस्टिफाई कर पाएंगे। दूसरी बात, अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप को इसके बारे में पता था कि माइकल फ्लिन ने जब रूस के राजदूत से बात की थी और उस समय वो सत्ता में नहीं थे, राष्ट्रपति ओबामा सत्ता में थे, तो उन्होंने कोई उन्हें वादा किया था कि प्रतिबंध जो लगा रहे हैं राष्ट्रपति ओबामा वो हटा लिए जाएंगे, अभी उस पर वो ओवर रिएक्ट ना करें। तो क्या ट्रंप को इस बारे में जानकारी थी और उपराष्ट्रपति को इस बारे में नहीं जानकारी थी? तो ये सब सवाल उठ रहे हैं और उनसे ट्रंप को जूझना पड़ेगा।
जी, वॉशिंगटन से ब्रजेश उपाध्याय, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बीबीसी रेडियो पर आप सुन रहे हैं दिनभर निखिल रंजन के साथ। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को आज 2 साल पूरे हो रहे हैं। साल 2015 में 14 फरवरी को ही अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में सरकार बनी थी और दिल्ली सरकार का दावा है कि इन 2 सालों में वो जनता से किए वादे को पूरे करने में पूरी तरह से जुटी हुई है। दिल्ली सरकार के मंत्री अपने कामकाज की तारीफ में जुटे हैं, लेकिन विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता का दावा है कि दिल्ली के लोग सरकार से निराश हैं। विजेंद्र गुप्ता से हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने बात की और पूछा कि वो दिल्ली सरकार के 2 साल के कामकाज का आकलन कैसे करते हैं।
मैं यही कहूंगा कि इन 2 सालों में तो दिल्ली के लोगों को बहुत निराश किया है और स्थिति यह है कि लोग इस सरकार से पीछा छुड़ाने की जुगत में है। बड़ी बड़ी बातें इस सरकार ने की थी, बड़े बड़े वायदे किए थे, लेकिन देखा जा रहा है कि अब उनका नामो निशान नहीं है। आपको याद होगा इन्होंने कहा था कि हम सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करेंगे आम आदमी की, मोहल्ला सभाएं बनाने की बात की थी, कहा था बजट हम जनता बनाएगी, जनता के बीच में हम जाएंगे, मोहल्ला सभाओं में बजट पारित होगा। मैं जानना चाहता हूँ मोहल्ला सभाएं कहाँ हैं? तीसरा बजट पेश करने जा रहे हैं। पहले बजट में जरूर इन्होंने एक नौटंकी की थी कि हम जा रहे हैं लोगों के बीच में बजट बनाने, लेकिन उसके बाद वो हवा हवा ही हो गया सब। महिला सुरक्षा की बात की थी, 10,000 बसें लाई जाएंगी, बिजली के बारे में कहा था कि हम अपने प्लांट लगाएंगे, सोलर एनर्जी की बात करते थे, वाईफाई, सीसीटीवी कैमरा, 500 स्कूल खोले जाएंगे, 20 डिग्री कॉलेज होंगे, तो ये सब कहाँ है।
लेकिन गुप्ता साहब, सरकार दावे कर रही है, उसने कई वादे पूरे किए हैं, बिजली का, पानी का, मोहल्ला क्लिनिक, इस तरह की बातें की हैं उन्होंने, और साथ में वो एक चीज और जोड़ते हैं, आपकी पार्टी के ऊपर आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार उन्हें काम नहीं करने दे रहे हैं।
देखिए, 45,000 करोड़ रुपए का बजट है दिल्ली सरकार का। जब बजट बनाते हैं तब तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमें रोक रहे हैं बजट बनाने से, फिर वो बजट खर्च भी करते हैं। तो जब आप पैसा इकट्ठा करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, तब तो आपने कभी इस तरह की दिक्कत की बात नहीं की, तो फिर वो पैसा जा कहाँ रहा है? योजनाओं पर तो पैसा खर्च नहीं हो रहा, लोगों को सुविधाएं भी नहीं मिल रही है, उनके लिए तो कहा जाता है हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। जब आपको पैसा खर्च करने का अधिकार है तो काम करने का अधिकार नहीं है, ये बड़ा विरोधाभासी है। कोई सत्ता में आने के बाद इफ एंड बट करे तो आप समझ सकते हैं, या तो यही कहा जाएगा नाचना आवे ना आंगन टेढ़ा, या फिर ये कहेगा कि काम की तो ध्यान नहीं है। अब मुख्यमंत्री जी एन 2 वर्ष के मौके पर दिल्ली से गायब हो, मैं जानना चाहता हूँ कि वो इस जवाब देने की स्थिति में भी नहीं है लोगों को। तो सवाल तो ये है कि 5 साल केजरीवाल की बात हुई थी, या तो 2 साल माइनस केजरीवाल हो गया।
भारतीय लोकतंत्र में एक रचनात्मक विपक्ष की बात भी की जाती है, आप विपक्ष के नेता हैं, सलाह क्या देना चाहेंगे? आलोचना तो आपने काफी की सरकार की, सलाह?
मैं तो सरकार को ये कहूंगा कि सबक ले इस पूरी परिस्थिति से और आत्ममंथन करे। सरकार के में बैठे हुए लोग इस बात का जरूर एहसास करें कि लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, और शायद अगले 3 साल में ये सरकार अगर एनालिसिस करेगी अपने बारे में तो जरूर कुछ उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अगर वो इसी तरह से अपनी अचीवमेंट की बात करते रहे तो लोग निराश हैं, तो उनका ये सोचना और पुख्ता हो जाएगा।
ये थे दिल्ली में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता, और उनसे बात कर रहे थे वात्सल्य राय। आज 14 फरवरी है, यानी कि वैलेंटाइंस डे। प्यार के इस पर्व पर दिल्ली में हो रही हलचल का जायजा लेने मेरे सहयोगी वैभव दीवान पहुंचे दिल्ली के एक मॉल में, तो वहां प्यार करने वाले जोड़े तो मिले ही, साथ ही इन्हीं जोड़ों के बीच उनकी मुलाकात हुई लव कमांडो से। लव कमांडो एक संगठन है जिसके सदस्य प्यार करने वालों की मदद करते हैं। इसे संजय सचदेव ने शुरू किया था। आखिर इस संगठन का क्या मकसद है और उसे कैसे पूरा किया जाता है, सुनिए संजय से वैभव दीवान की बातचीत।
ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। और आज 14 फरवरी यानी वैलेंटाइंस डे डूबने का दिन है। एक नई फ्लेम उगती है, लगती है प्यार में आज के दिन, जब लड़का लड़की एक नई कमिटमेंट एक बार रिफ्रेश करते हैं। मैं कहता हूँ कि ये एक टाइप का मॉडर्न करवा चौथ है, जिसके अंदर आप प्यार की लॉन्ग लाइफ की कामना करते हैं, एक दूसरे को रोज़ देते हैं। ये रोज़, ये गुलाब का फूल जो आज 100 रुपये का हो चुका है। मेरे साथ आज इस दिन पर हैं लव कमांडो के संजय सचदेव भाई, ये चेयरमैन हैं लव कमांडो के। सर, लव कमांडो है क्या?
ये दुनिया का अकेला बड़ा संगठन है जो प्रेमी जोड़ों की रक्षा करता है।
प्रेमी जोड़ों की रक्षा ये क्यों करनी पड़ती है?
चूंकि इस धरती पे प्रेम का विरोध करने वाले तत्व बहुत हैं, और हम लव कमांडो अकेला संगठन है जो इन प्रेमियों की जान बचाता है। चूंकि प्रेम नेचर है, नेचुरल है, जिसे नेचर को नहीं रोक सकता, तो जो लोग नेचर को रोकने का काम करते हैं हम उन्हें टोकने का फर्ज अदा करते हैं।
ये लव कमांडो आप बने कैसे और क्यों बनना पड़ा आपको?
देखिए, सन 2000 से लेके 2007 तक हम लोग वैलेंटाइन पीस कमांडोज के रूप में चला करते थे। जो वैलेंटाइन डे पर प्रेमी जोड़ों पे हमले होते थे, टॉर्चर होता था, उसका काउंटर करने के लिए हमारा संगठन खड़ा हुआ। और जब सन 2010 में अपराध बहुत होने लगे, सो कॉल्ड सम्मान के नाम पर, ऑनर के नाम पर, तो हमने फुल फ्लेज लव कमांडोज का गठन किया, जो आज दुनिया का जाना माना संगठन है, प्रेमी जोड़ों की रक्षा करने वाला एकमात्र संगठन।
प्यार में चुनौतियां क्या क्या आती हैं?
तरह तरह की चुनौतियां हैं। कोई जात के नाम पे चुनौती देता है, कोई धर्म के नाम पे, कोई अमीर के नाम पे, कोई गरीब के नाम पे, कोई अगड़े के नाम पे, कोई पिछड़े के नाम पे, और नहीं तो बिना मतलब के जी हमारे यहाँ लव मैरिज होती नहीं है। अरे क्यों नहीं होती भाई, कहाँ की संस्कृति में है नहीं होगी? ये तो हर जगह की संस्कृति है कि प्यार करना पाप नहीं और विरोधी हमारा बाप नहीं।
प्यार चुप हो जाता है कुछ टाइम के बाद
ना, ये तूफान से पहले की शांति होती है, और उसके बाद जो प्यार का उफान आता है तो फिर बहा देता है सबको, कोई नहीं दिख पाता उसके सामने।
आपने बातचीत सुनी लव कमांडो संजय सचदेव की। वो जो बात कह रहे थे उसमें ये एक सच्चाई है कि ज़्यादातर मशहूर प्रेम कथाओं का अंजाम बिछड़ना रहा है, और इन्हीं में से एक वाराणसी की प्रेम कहानी आशिक माशूक की भी है। वाराणसी के औरंगाबाद इलाके में आशिक माशूक की मज़ार इन्हीं दो मोहब्बत करने वालों के प्यार की मिसाल है, जो जिंदा रहते तो नहीं मिल सके लेकिन मौत ने उनको मिला दिया, और अब ये जगह प्यार करने वालों के लिए किसी धार्मिक स्थल से कम नहीं। वैलेंटाइन डे पर वाराणसी से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट।
खुशी का मौका जैसा भी हो, आज के दौर में बगैर शोरगुल और तामझाम के कहां मनता है। अब वैलेंटाइन डे को ही ले लीजिए, लेकिन वाराणसी के औरंगाबाद इलाके में स्थित आशिक माशूक की मजार पर वैलेंटाइन डे के मौके पर राहुल शांति ढूंढते आ पहुंचे हैं।
बारे में सुना है कि ये भी एक दूसरे से प्यार करते थे, और किसी कारण ना मिल पाने के कारण ये लोग अपनी जान दे के भी ये लोग अपने प्रेम को अमर किए हैं। इनका आशीर्वाद मिलता है, लोग दूर दूर से भी आते हैं, और मतलब वो लोग अपने शांति के लिए आते हैं और अपने प्रेम को ये दिखाने के आते हैं कि हाँ मेरा प्रेम इनकी तरह शांतिपूर्वक और आगे बेहतर हो सके।
परी भी यहाँ अपने प्यार को पाने की दुआ मांगने आई है।
आशिक माशूक के बारे में क्या कहने हैं, मैंने इनका नाम बहुत सुना हुआ था, बस मेरी एक चाहत थी कि मेरा भी भाई पूरा हो जाए मन्नत जो मैं चाहती हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे मन्नत माने। मुझे और पता है, मुझे सब लोगों से ये पता चला जो भी यहाँ माथा टेकते हैं या सच्चे मन से दुआ करते हैं उसकी मन्नतें पूरी होती है, और जब कोई मिल नहीं पाते, कोई जोड़ा मिल नहीं पाता, तो वो अपनी चाह लेके यहाँ पे आते हैं और उसकी चाहत माशाल्लाह पूरा हो जाता है।
मजार की देखभाल करने वाले सदर शेराज अहमद ने बताया कि
यहाँ पर खास बात ये है कि यहाँ पर जो है तो ये एक प्रेमी और प्रेमिका की मजार है, उनका नाम आशिक और माशूक है, तो काफी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं और अपना जो है तो अपनी मनोकामना मांगने के लिए, और उनकी पूर्ण भी होती है।
शहर मुफ्ती मौलाना अब्दुल बाती नुमानी ने दशकों से उनके द्वारा बनारस के धरोहरों पर निकाली जा रही किताब तारीख असारे बनारस के बारे में बताया, जिसमें आशिक और माशूक के प्यार और मजार का जिक्र है।
आशिक थे जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब, और मोहम्मद यूसुफ की निगाह किसी पड़ोस की लड़की के ऊपर पड़ी और दोनों में मोहब्बत पैदा हो गई। जब लड़की के वालिदैन को यह पता चला तो लड़की को उन्होंने रिश्तेदार के यहाँ भिजवाने का उन्होंने प्रोग्राम बना लिया। जब मोहम्मद यूसुफ को मालूम हुआ तो वो भी पीछे पीछे चले। रास्ते में एक दरिया पड़ता था, बीच दरिया में कश्ती पहुँची है तो दूसरी कश्ती में मोहम्मद यूसुफ भी सवार हो गए और पीछे पीछे जाने लगे। लड़की के साथ एक बूढ़ी औरत भी थी। उस बूढ़ी औरत ने जब ये देखा कि यूसुफ भी आ रहे हैं तो उस औरत ने लड़की का चप्पल दरिया के अंदर डाल दिया और यूसुफ से कहा, इस जूती को दरिया से निकाल कर दो। यूसुफ दरिया में कूद पड़े, नतीजा ये हुआ कि वो दरिया में गए तो निकल ना सके। कुछ दिनों के बाद अपने घर लौटने के इरादे से वो लड़की उसी बूढ़ी औरत के साथ वापस आती है और उसी रास्ते में उसी बीच दरिया में दरिया के अंदर छलांग लगा दी। जब लड़की की लाश निकाली गई तो क्या देखते हैं लोग, लड़की के हाथ में मोहम्मद यूसुफ का सर था और मोहम्मद यूसुफ के हाथ में लड़की का सर था। बनारस के औरंगाबाद में दोनों लाशों को दफन कर दिया गया, जहां आज भी वो दोनों कब्रें मौजूद हैं, आशिक माशूक का मकबरा।
चकाचौंध और दिखावटी दौर से जब आज का प्यार भी अछूता नहीं है, ऐसे में बनारस के आशिक माशूक का मजार सच्ची मोहब्बत करने वालों को अपनी ओर खींच लाता है। रोशन जायसवाल, बीबीसी हिंदी, वाराणसी।
तो अगर आपके मोहब्बत में भी चुनौतियां हैं और आप लड़ना चाहते हैं तो लव कमांडो से मिलिए, और दुआ मांगना चाहते हैं तो औरंगाबाद आइए वाराणसी में। फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, तो प्रमुख समाचार जल्दी से सुन लेते हैं वात्सल्य राय से।
बीबीसी समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने AIADM के महासचिव शशिकला को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शशिकला गुट के विधायकों ने ईके पलनीसामी को नया नेता चुना है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल फ्लिन ने इस्तीफा दे दिया है। जापान की कंपनी तोशिबा को इस साल $3.4 अरब का घाटा होने की खबर आने के बाद कंपनी के चेयरमैन शिगेनेरी शिगा ने इस्तीफा दे दिया है। बीबीसी समाचार।
दिनभर में आज इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे अजीत सारथी। आपसे कल सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में फिर मुलाकात होगी। निखिल रंजन को सभी साथियों संग दीजिए अनुमति। नमस्कार।